प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको को तू मिटाने आया, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर, जख्मी हाथ है कैसे सुंदर, तूने जय पाई है सब पर, अपना प्रभु जान तुझको आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने भजने।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने परिवार के निमित्त पौलुस के निर्देशों को देखा था कि बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी होना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। प्रार्थना है प्रभु, इस समय आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में है, नौकरी की तलाश में है, संतान की आशा में है, वैवाहिक जीवन के लिए परेशान है। होने दे प्रभु, प्रत्येक जीवन आप में आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के अध्ययन से आप हमसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद को निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हमने देखा था कि 10 आज्ञाएं विश्वासी के जीवन का प्रतिमान नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनका उल्लंघन करें। एक बालक को अपने माता पिता की आज्ञा मानना है, वरन वयस्कों को भी अपने जीवन से उनका मान प्रकट करना है। यह एक अतिरोचक बात है कि विश्राम दिवस की आज्ञा के अलावा अन्य सब आज्ञाएं नए नियम में भी हैं। निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 पद में माता पिता की आज्ञा मानने की आज्ञा के साथ दीर्घ जीवन की प्रतिज्ञा भी है। वही प्रतिज्ञा यहाँ दोहराई गई है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की गई है। अन्य आज्ञाओं के साथ भी प्रतिज्ञाएं हैं, परंतु उनके उल्लंघन करने पर, न कि उनके पालन करने पर। मेरे प्रियो, शिमशोन और अबशलोम पुराने नियम के 2 युवक हैं जिन्होंने इस आज्ञा को नहीं माना था। परिणाम स्वरूप उनका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो गया। शिमशोन एक न्यायी था और युवावस्था में ही मर गया। अबशालोम ने अपने पिता दाऊद की आज्ञा नहीं मानी और वह भी युवावस्था में ही मारा गया। आइए हम आगे पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। शिक्षा अर्थात अनुशासन और चेतावनी अर्थात निर्देश। उन्हें प्रभु के अनुशासन और शिक्षाओं में बढ़ा कर आगे बढ़ने देना है। व्यवस्था में तो माता पिता को ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई थी। अनुग्रह के अधीन पारस्परिक उत्तरदायित्वों और पारस्परिक क्रियाओं का प्रावधान है। माता पिता को बच्चे पर अपनी इच्छा नहीं थोपना है, क्रोध में आकर उसकी ताड़ना नहीं करनी है। माता पिता का उत्तरदायित्व है कि संतान को धर्मशास्त्र के सत्य की शिक्षा दे और उसके समक्ष वैसा ही आचरण भी रखे। अपनी संतान को रिस न दिलाओ। विश्वासी होने के कारण आपको घर में भी विश्वासी का जीवन जीना है। बच्चे वालों का विशेष अभिप्राय पिता से है, क्योंकि संतान को अनुशासन सिखाना और शिक्षा देना मुख्य रूप से उसका ही दायित्व है, परंतु माता इससे बची नहीं है। संतान को रिस न दिलाया जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी ताड़ना न की जाए। नीति वचन का लेखक इस विषय में बहुत कुछ कहता है। नीति वचन 13:24 में, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। नीति वचन 19:18 में लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। 22:15 में लिखा है, लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। नीति वचन 29:15 में लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। नीति वचन 29:17 में लिखा है, अपने बेटे को ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। एक पिता अपने पुत्र की ताड़ना कर रहा था और कह रहा था, मुझे तुझसे अधिक कष्ट हो रहा है। पुत्र ने कहा, परंतु वहां नहीं जहां मुझे हो रहा है। वे बच्चे जो आज्ञा ना माने उनकी पिटाई होना चाहिए, परंतु क्रोध में आकर नहीं। यह भी स्पष्ट है, हमें बच्चों को रिस नहीं दिलाना चाहिए। ऐसा तब होता है जब बच्चा देखता है कि हम उसके साथ दुराचार कर रहे हैं, उन्हें अनुशासित करना आवश्यक है। नीति वचन 23 में लिखा है कि ताड़ना करने से बच्चा मर नहीं जाएगा। मुझे स्मरण है कि मेरी माता ने और मेरे पिता ने मुझे अधिक पीटा है। घर में वही हमारे साथ अधिक समय रहती थी। वह बेंत से मारती थी और बहुत दर्द भी होता था। मैं एक अच्छा बच्चा था और समझ नहीं पाता था कि मेरी इतनी अधिक पिटाई क्यों होती है, जबकि मेरे बड़े भाई को पिटाई कम मिलती थी। मैंने एक बात तो सीख ली थी कि यदि मैं ऊंची आवाज में चिल्लाऊंगा तो वह मुझे छोड़ देगी, क्योंकि पड़ोसी आकर कहेंगे, देखो बेचारे बच्चे की जान ले रही है। परंतु सच तो यह था कि वह मेरी जान नहीं ले रही थी, वह मुझे अनुशासन सिखा रही थी। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। एक विश्वासी परिवार के बच्चे को मसीही शिक्षा मिलना चाहिए कि वह प्रभु यीशु के साथ जीवंत संबंधों में आ जाए, और जब वह संसार का सामना करे तब वह सुरक्षित रहे। प्रत्येक माता पिता का यह सौभाग्य है कि वे अपनी संतान को प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान में बड़ा करें। मेरी पत्नी मेरे साथ सेवा में एक साथ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ऑफिस में जाता हूँ, वह नहीं जाती है। मैं इस बात पर बल दे चुका हूँ। मैंने उन्हें ना तो कभी बाइबल अध्ययन कॉलेज में या किसी संस्था में भेजा है, और ना ही वह मेरी कलीसिया में महिला सभा में कोई पद संभालने उसे दिया गया है। जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ उस कलीसिया में मैं आरंभ में ही कह देता था कि मेरी पत्नी है और वह इस लायक नहीं कि आप उसे वह स्थान दें। उसका काम है परिवार और बच्चों को संभालना। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी को वह सौभाग्य प्राप्त है जो मुझे संदेह है कि अन्य सेवकों की पत्नियों को प्राप्त है या नहीं। एक बार मैं घर से बाहर था और मेरी पत्नी मेरे बेटे के साथ अपनी माता के घर गई हुई थी। उसने अपनी माता से कहा, माँ, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। वह उसे शयन कक्ष में ले गई और घुटने टेक कर उसे प्रभु के पास लाने का सौभाग्य प्राप्त किया। मेरा विचार सदा यही रहा है कि कलीसिया के कामों में व्यस्त रहने की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं कलीसिया में ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जिनके बच्चे भटक चुके हैं। मेरे मित्रों, आपका मुख्य दायित्व है आपका बच्चा। अच्छा होगा कि आप उस पर ध्यान दें, अपेक्षा इसके कि अन्यों के कामों में टांग अड़ाएं और अन्य बच्चों की सेवा करें। मैं जानता हूं कि ऐसा कहने से मैं आपकी स्वीकृति नहीं पाऊंगा, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसने हमें अपने बच्चों का उत्तरदायित्व सौंपा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पोषण करो। देखिए, शिक्षा प्रभु का ही होना है, अनुशासन और शिक्षा प्रभु के नाम में हो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। पौलुस पहले पति पत्नी के संबंध में अधीनता की चर्चा करता है, इसके बाद माता पिता संतान के संबंध में, अब वह सड़क, कार्यालय, कार्यस्थल, बाजार, व्यापार के क्षेत्रों में आता है। यहाँ परिस्थिति कुछ भिन्न है, क्योंकि यहाँ परिवार जैसा प्रेम का वातावरण नहीं है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर की संतान यहाँ भी एक दूसरे के अधीन रहे। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 5 से 8 पद में लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। दासों को या सेवकों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करना है। स्वामी या अफसर देख रहा हो या घड़ी पर आंखें गड़ाए हो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ना बने। दूसरे शब्दों में, अफसर की चापलूसी आप ना करें। हर काम ऐसा करें जैसा मसीह का दास करता है। परमेश्वर की इच्छा दिल और जान से पूरी करें। यदि श्रमिक विश्वासी है तो उसके उत्तरदायित्व है, और यदि नियोजक या स्वामी विश्वासी है तो उसके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। यह दास, स्वामी और कर्मचारी नियोजक के संबंध हैं। पौलुस के युग में तो वास्तव में दास और स्वामी में महान अंतर होता था। स्मरण रखें कि यह भाग अध्याय 5 पद 21 से आरंभ हुआ है। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। रविवार की आराधना तक तो इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु जब सोमवार के दिन हम काम पर जाते हैं, तब फैक्ट्री के विश्वासी स्वामी के अधीन काम करने वाले विश्वासी के लिए मजदूर बंध की आवश्यकता नहीं है। वह पूंजीपति को अपने अधिकार सुनाए। प्रार्थनाशील उद्यमियों को परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि वे कर्मियों के साथ मसीही व्यवहार करते हैं। वहां मजदूर संघ की आवश्यकता नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहां सिक्के के दोनों पहलू हैं, कर्मी और नियोजक। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि रोमी साम्राज्य की 12 करोड़ जनता में से आधे दास थे। मसीही विश्वास ने दास प्रथा का विरोध करने की अपेक्षा दासों के पद स्थान में जाकर उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया और उन्हें मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता का बोध करवाया। सुसमाचार की शैली ने ही दासत्व को अस्वीकार्य जाना। सुसमाचार ने वास्तव में दासत्व की बेड़ियों को तोड़ा है और उनके मन मस्तिष्क को बांधने वाले बंधनों को काटा है। रोमियों की पत्री 16 अध्याय में हम देखते हैं कि असंख्य दासों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। जी हाँ, वहां जितनों के नाम हैं उनमें से अधिकांश दास हैं या किले में सुरक्षा कर्मी हैं। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, उनकी भी आज्ञा मानो। ध्यान दीजिए, लिखा है आज्ञा मानो। इसका अर्थ है कि मसीही विश्वास दासों को विद्रोह के लिए प्रेरित नहीं करता है। यह विश्वास जिस सुसमाचार का प्रचार करता है वह किसी भी क्रांति से अधिक क्रांतिकारी है। क्रांति के परिणाम स्वरूप कड़वाहट और घृणा उत्पन्न होती है जो सदियों तक बनी रहती है। प्रभु यीशु का सुसमाचार तो केवल बीच की दीवार को ढा देता है। आज अलग अलग समुदायों में पक्षपात और जातीय मनभेद पाए जाते हैं, परंतु सुसमाचार परस्पर भाईचारे का प्रेम जगाता है। अब विश्वासी का अर्थ यह नहीं कि केवल मुंह से अंगीकार करना और रविवारीय आराधना में परमेश्वर पुत्र बनना है। उसका सच्चा विश्वासी होना नियोजक के प्रति उसकी निष्ठा से प्रकट होता है, उसके व्यवहार से प्रकट होता है, उसके परिवार, उसकी कलीसिया और उसके पास्टर के प्रति उसकी विश्वास योग्यता से प्रकट होता है। यदि वह इन स्थानों में विश्वास योग्य नहीं तो वह प्रभु यीशु का भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता है। हे दासों, जो इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, उनकी भी आज्ञा मानो। इससे प्रकट होता है कि दास कुड़कुड़ाकर और समय गंवाते हुए काम करते थे, और जब स्वामी सामने हो तभी कुछ काम करते थे, अन्यथा चुपचाप बैठे रहते थे। अब वह प्रभु यीशु का दास है और प्रभु यीशु ने उसे स्वतंत्र कर दिया है, उसे अपने स्वर्गीय स्वामी को प्रसन्न करना है। सांसारिक स्वामी तो केवल उनकी देह का मालिक होता है, परंतु उनकी आत्मा का नहीं। डरते और कांपते हुए अर्थात स्वामी के लिए मन में सम्मान के साथ उसकी मर्यादा उभारना, न कि वास्तव में खड़े खड़े कांपना। मन की सीधाई से अर्थात मुंह पर कुछ और पीठ पर कुछ ऐसा ना हो। मुंह पर चापलूसी और पीठ पर छुरा घोंपना ऐसा भी ना हो। विश्वासी का स्वागत ऐसा नहीं होना है। सेवक का स्वभाव सदैव वैसा ही बना रहे जैसा मसीह के प्रति। दास को उसके तुच्छ स्थान से उठाकर प्रभु यीशु का दास बनाया गया था और प्रभु यीशु ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है। उसे अपने सांसारिक स्वामी के ऊपर अपने स्वर्गीय स्वामी को प्रसन्न करना है, क्योंकि सांसारिक स्वामी केवल उनकी देह का स्वामी है, परंतु प्रभु के दास हो जाने पर वे संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ आत्मा से भी मसीह के अधीन है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस स्वयं को मसीह यीशु का बंधुआ दास कहता है। सच्चे हृदय से अर्थात उनका व्यवहार उनकी विश्वासी सेवा को प्रकट करे। परमेश्वर की संतान, दास या स्वामी, कर्मचारी या नियोजक उस स्थान पर आ जाती है जब उसका उद्देश्य प्रभु यीशु को प्रसन्न करना होता है। इस प्रकार स्वामी और कर्मचारियों के मध्य स्थित बाधाएं आसानी से पार की जा सकती है। आज देह के दासत्व की अपेक्षा मानसिक दासत्व है। यह दासत्व रोमी साम्राज्य के दासत्व से कहीं अधिक घातक और अनिष्टकार है। लाखों मनुष्य विदेशी विचारों को अपनाने के लिए कैसा भी बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे एक बार किसी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मसीह को ग्रहण किया था। एक समय था कि वे राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक पद्धति के दास थे, परंतु अब वे स्वतंत्र हैं। उनमें से एक युवक ने मुझसे कहा, एक समय था कि मैं सोचता था हम अपनी अर्थव्यवस्था को बदल दें तो हम सबको समृद्ध और हर्षित कर पाएंगे, परंतु अब मैं समझ गया हूं कि केवल मसीह ही ऐसा समाज बना सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, परंतु हम जान गए हैं कि हमारा लक्ष्य सीमित है और केवल मसीह ही है जो इस काम को कर सकता है। मनुष्य के बंधन कैसे टूट सकते हैं? केवल प्रभु यीशु के सुसमाचार के सामर्थ्य से। वही आपको स्वतंत्र कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 36 पद में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मसीह ही है जो स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन असंख्य मद व्यवसायियों और नशा करने वालों पर ध्यान दें। हमारे चारों ओर दासत्व है। हमें मसीह यीशु को छोड़ न तो मनुष्य का और न ही किसी वस्तु का दास होना है। तर्शीश का शाउल अपनी विचारधाराओं का दास था। वह एक फरीसी था। मसीह को ग्रहण करते ही वह स्वतंत्र हो गया। उसने तुरंत ही अपने नए स्वामी की अधीनता स्वीकार की और कहा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 5 पद में, हे प्रभु तू कौन है? वह प्रभु यीशु का बंधुआ दास बन गया था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कर्मचारी को ऊंचे पद पर उठा लिया था। उसने श्रम का मान बढ़ा दिया था। अब चाहे कोई न्यायासन पर बैठा हो या खड्डा खोद रहा हो या कार्यालय में काम कर रहा हो या खान में खुदाई कर रहा हो या खेती कर रहा हो, वह कह सकता है मैं प्रभु यीशु की सेवा कर रहा हूँ। विलियम केरी पेशे से जूता सिलने वाले थे, अर्थात वे मोची का काम करते थे। उसने विदेशी प्रचारक होने के लिए आवेदन दिया। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उनका अभिप्राय उसे नीचा दिखाना था, क्योंकि वह अभिषिक्त पादरी नहीं था। केरी ने उत्तर दिया, मेरा पेशा है प्रभु की सेवा करना और खर्चा चलाने के लिए मैं जूते बनाता हूँ। वह प्रभु यीशु का दास था। काश विश्वासी आज ऐसे ही कर्मों को करते। संपूर्ण परिश्रमिक परिदृश्य को बदल देता है, और वह बाद में एक महान सेवक के रूप में जाना गया, जो हमारे भारत देश में आकर उसने हम तक सुसमाचार को पहुंचाया। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर का दास पौलुस इफिसियों के पत्री के माध्यम से इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमें अपने बच्चों को आज्ञा मानना सिखाना है, और इसके साथ साथ हम जो प्रभु के दास हैं, दासी हैं, सेवक हैं, विश्वासी हैं, एक दूसरे में भेदभाव न करते हुए परमेश्वर के भय में होकर काम करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको स्वतंत्र करता है, ताकि हम उसके निकटता में रहकर उसको महिमा दे सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रभु आप सबको अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको ज्ञान तू ही है पिता का, दूत भी यह मिल कर गाते। ज्ञान तू ही है पिता का, दूत भी यह मिल कर गाते। भक्त तेरे मिल जुल गाते, हालेलुया आमीन आमीन। भजने आए है पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। भजने आए है पिताजी, आत्म सच्चाई।